हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 15 मिनट बाद रोहान की गाड़ी निमानी हाउस के सामने जाकर रुकी। उसने अनाही के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। गाड़ी रुकने के बाद अनाही कार से उतर चुकी थी, पर रोहान नहीं उतरा, जिसे देखकर अनाही ने आंखें छोटी करके कहा, आप साथ नहीं चलेंगे मेरे? रोहान ने फीकी हंसी के साथ कहा, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने देते हैं, मेरा साथ लेकर क्या ही करेंगी आप, मुझे नहीं लगता आपको मेरे साथ की ज़रूरत है। इतना बोलकर रोहान ने गाड़ी स्टार्ट कर ली और वो दरवाजे से ही वापस चला गया और अनाही बस उसे देखती रह गई। शायद पहली बार रोहान ने कुछ अच्छा टॉन्ट मारा था, वरना अब तक तो अनाही का पलड़ा ही हमेशा भारी होता था। पर अनाही नाराज होने की बजाय हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, इम्प्रेसिव, लगता है संगत का असर हो रहा है। उसके बाद वो तेज कदमों से घर के अंदर चली गई। वेदांत अपने केबिन में बैठा था और अपने फ़ोन को देख रहा था, क्योंकि आज उसने विहा को अपने नंबर दिए थे ताकि कोई परेशानी हो तो वे उसे मैसेज कर सके। रात को इतना समझाने के बावजूद विहा मॉर्निंग में उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वेदांत थोड़ा परेशान था। वेदांत के फ़ोन से जैसे ही नोटिफिकेशन की आवाज़ आई, उसने हाथ बढ़ाते हुए अपना फ़ोन ऑन किया, पर अफसोस, इस बार भी विहा का मैसेज नहीं था, किसी की मेल आई थी, जिसे देखकर वेदांत ने टेबल पर फ़ोन पटकते हुए कहा, मैं क्यों उसके मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ? जब परेशानी होगी तब वो मुझे मैसेज करेगी, ऐसे ही क्यों मैसेज करेगी? और याद करने के लिए वजह भी तो होना चाहिए, हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है जिसकी वजह से वो मुझे याद करे। वेदांत ने अपने दिल को तसल्ली दी ही थी कि अचानक वापस उसका फ़ोन बजा और इस बार भी किसी और का ही मैसेज था, और ये किसी अननोन नंबर से था, जिसे देखकर वेदांत की आंखें छोटी हो गईं। उसने झुंझलाकर मैसेज ओपन किया तो ये विहा की कॉलेज का वीडियो था, जहां वो गार्डन में बेंच पर अभिषेक के साथ बैठी थी। अभिषेक उसे एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा था। विहा बीच बीच में हल्का मुस्कुरा भी रही थी। मैसेज के नीचे लिखा था, कम उम्र की लड़कियों के साथ रिश्ता करने का नतीजा अक्सर यही होता है, आजकल की खबरें नहीं सुनी, पत्नियों ने अपने आशिक के लिए क्या क्या नहीं कर दिया है, और तुम दोनों के बीच तो कोई रिश्ता भी नहीं है, सोचो अगर तुम्हारी पत्नी भी। बस इतना ही मैसेज लिखा हुआ था और उसके बाद इस अजीब से मैसेज को अधूरा ही छोड़ रखा था। एक पल के लिए वेदांत का हाथ कांप गया था। विहा को किसी और की तरफ मुस्कुराता देखकर उसने जबड़े कसते हुए कहा, विहा, तुम ऐसा नहीं करने वाली हो, आई विश, ये सब बस किसी का भद्दा मजाक हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वेदांत अपने दिमाग को तो समझा रहा था, पर उसका दिल समझने को तैयार नहीं था, इसलिए वो फ़ोन को स्विच ऑफ करते हुए टेबल पर साइड में रख देता है ताकि कुछ पल के लिए उसे कोई मैसेज ही ना आए, और अपने काम पर ध्यान देने लगा। थोड़ी देर बाद जूली उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाती है, और जूली के साथ टाइम स्पेंड करके वेदांत का मूड भी कुछ हद तक ठीक हो जाता है। पर उसकी जेलसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए आज उसने डिसाइड किया था वे विहा को इस बारे में ज़रूर पूछेगा। वहीं निमानी हाउस में अनाही का कमरा। अनाही मिरर में देखकर अपने बालों को कर्ल कर रही थी। उसने इस वक्त पिस्ता ग्रीन कलर का प्लाजो सूट पहना था और उसके साथ एक नेट का दुपट्टा था, जिसके बॉर्डर पर छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए थे। अनाही के हाथों की हरकतों की वजह से वो घुंघरू शोर कर रहे थे। अनाही काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वो अपने गालों पर हल्का सा ब्लश लगाते हुए बोली, अक्सर शादी के बाद एक लड़की अपने पति के साथ डेट पर जाती है, पर मेरा पति तो सीधा कोर्ट की डेट निकलवाने पर तुला हुआ है। इससे अच्छा है मैं अपनी सास के साथ ही कहीं घूमने चली जाऊं, उनका भी मन लग जाएगा। ये सोचकर अनाही पूरी तरीके से तैयार होकर निवेदिता के कमरे में जाती है। निवेदिता नमन की तस्वीर लिए बालकनी में बैठी थी। वो बालकनी जैसे उनका सबसे पसंदीदा प्लेस था नमन को याद करने के लिए। उन्हें वहां बैठा देखकर अनाही ने धीरे से बालकनी का ग्लास डोर खटखटाकर कहा, मम्मी जी, क्या आप फ्री हैं? निवेदिता ने जल्दी से आंखों के कोने पहुंचकर कहा, हाँ बेटा, मैं तो हमेशा फ्री ही रहती हूँ, मेरा कौन सा बिजनेस चलता है या मैं देश को संभालती हूँ जो मैं बिजी रहूँगी? ये सुनकर अनाही ने हंसते हुए कहा, ये तो है, पर लगता है कि बालकनी ही आपका बिजनेस रूम बना हुआ है, जब देखो तब आप यहीं रहती है, ऐसा क्या खास है इस जगह में? यहाँ से कौन सा ऐसा नज़ारा दिखता है जो घर के बाकी कोनों में नहीं है? निवेदिता ने खोए हुए अंदाज में कहा, ये तुम्हारे ससुर के साथ बीते पलों का नतीजा है। हम दोनों ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड इस बालकनी में किया है, बस इसी वजह से अलग सा लगाव है इससे। तुम बताओ, आज कैसे मुझे याद कर लिया? कैसे फुर्सत मिल गई तुम्हें अपने बिजी शेड्यूल से? अनाही ने अपने कान में पहने झुमकों को छूते हुए कहा, वो सब छोड़िए मम्मी जी, ये बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? निवेदिता ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने दोनों हाथों से उसकी नज़र उतारते हुए बोली, हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हो, कहीं जाना है तुम्हें? तुम कहो तो मैं ड्राइवर को बुला देती हूँ। निवेदिता की ये बात सुनकर अनाही ने गंदा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे आपके साथ जाना है। ये सुनकर निवेदिता ने आंखें बड़ी करके कहा, आर यू श्योर कि तुम्हें मेरे साथ ही जाना है? अनाही ने क्यूट तरीके से दो बार हाँ में सर हिलाया तो निवेदिता उसे मना नहीं कर पाई और फिर उठकर फ्रेश होनी चली गई। करीब आधे घंटे बाद निवेदिता और अनाही एक कैफे में बैठे थे। दोनों ने अपने सामने आइसक्रीम रखी हुई थी। अनाही ने एक चम्मच आइसक्रीम खाते हुए कहा, मम्मी जी, मुझे आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी थी जो शायद ज्यादा सीरियस हैं, पर मेरा मन नहीं मान रहा था किताबी बातों को पढ़कर, तो सोचा मैं आपसे पूछ लेती हूँ। निवेदिता ने कहा, हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें मुझसे? अनाही ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, मुझे माफ़ करना, मैं आपके जख्मों को कुरेद रही हूँ, पर आपने ये कोर्ट में जो केस चला रखा है उसकी कोई ठोस नींव नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस आप वहाँ जाकर अपनी तसल्ली के लिए सिग्नेचर करके आ जाते हैं। मुझे ये सब सही नहीं लगता है। या तो हमें उस केस को ढंग से रीओपन करना चाहिए और लड़ना चाहिए, या फिर इस मामले को रफा दफा करके आराम से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। मुझे पता है आप आज पापा जी को इसीलिए याद कर रही थीं क्योंकि आज कोर्ट की डेट थी। निवेदिता ने हल्के गुस्से में कहा, तुम क्या कह रही हो बेटा, मैं नमन को हमेशा याद करती हूँ। उनकी यादें किसी कोर्ट की डेट की मोहताज नहीं है, वो मेरे दिल में है, ना कि किसी केस की फाइल में। और रही बात इस केस को ना चलने की, तो जब तक जिंदा हूँ तब तक ये केस चलेगा। जिस दिन मर जाऊँ तुम लोग चाहो तो इसे बंद कर सकते हो, उसके बाद सब कुछ तुम लोगों के हाथ में ही होगा। लेकिन जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ये केस चलेगा, बंद नहीं होगा। मेरे पति एक काबिल साइंटिस्ट थे, लोगों को उनकी कामयाबी इतनी खटकी थी कि किसी ने उनकी जान ही ले ली। खैर, सरकार को उनसे मिले फ़ायदा की कोई कद्र नहीं रही, क्योंकि अब वो इंसान ही इस दुनिया में नहीं रहा। हर कोई इसे भुला देना चाहता है। तुम चाहो तो तुम भी इन सब चीज़ों से दूर रह सकती हो। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मेरे पति के लिए तुम लड़ो कोर्ट में जाकर। अनाही ने अपने मन में कहा, शायद मेरे बोलने का तरीका सही नहीं था। फिर उसने निवेदिता को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मम्मी जी, मैं समझ गई, मैं बस देखना चाहती थी कि आप इस केस को लेकर कितनी सीरियस हैं। मैं आज उसकी फाइल लेकर आई थी, सोचा मैं खुद से आपको बता दूं, किसी और से पता चलेगा तो आपको बुरा लगेगा।
और उस फाइल को पढ़कर एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि पापा जी का मर्डर करने वाला कोई उनका बहुत करीबी था। किसी और इंसान के पास किसी के रूटीन की इतनी मिनिमल डिटेल्स हो पाना नामुमकिन है। अनाही की ये बात सुनकर निवेदिता हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि किसी बाहर वाले को नमन के पूरे डेली रूटीन का कैसे पता हो सकता है।